अपनी अपना स्वार्थ भूल करके संपूर्ण रूप से ऐसे महान पुरुष जो हैं भक्तिमान रसिक हैं, महान कृपालु हैं, ऐसे महापुरुषों की सेवा अनकंडीशनल सर्विस ये हो गया। जैसे लोकनाथ गोस्वामी की सेवा हमारे नरोत्तम ठाकुर जी ने, महतो की सेवा। गुरु जी सबसे प्रसन्न होते हैं कब? यदि कोई उनकी बातों को सुनकर के गदगद हो जाए ना, वाह बहुत सुंदर बात आ जाए, उपलब्धि करके। इससे बढ़कर के और कोई प्रसन्न किसी बात से नहीं। यदि उनके वचनों को कोई सुन करके और गदगद हो जाए, प्रेम में आतुर हो जाए, तो उसे सबसे बड़े वशीभूत हो जाए और उसको सर्वस्व दे देते हैं। इसके बाद में तीसरा है दीक्षा। दीक्षा मैंने दिव्य ज्ञान, यही दीक्षा गोप कुमार को उनके गुरु जयंत ने दी गोपाल मंत्र के रूप में। इसके बाद में उसी गुरु के दिव्य मंत्र का खूब श्रद्धा के साथ में जप, और जो नाम दिया है उसका कीर्तन, दोनों शास्त्रार्थ नहीं, जप और कीर्तन, ये दीक्षा के अंतर्गत हुआ। ये मंत्र जप है, ये क्या है, ये भजन की क्रिया है, इसी को कहते हैं भजन की क्रिया। मंत्र जप, मंत्र जप के समय में ऊंघने लगे, आलस्य आने लगे और ये काम करना है जल्दी से इसको कर लो, पर झट एक मिनट में आरती कर ली, अर्चन कर लिया और ठाकुर जी के सामने प्रसाद भोग बढ़ा दिया और बस अभी जाना है, हमारे स्वामी जाएंगे अभी सर्विस में, उनके लिए जल्दी से करो, बच्चे स्कूल जाएंगे जल्दी से करो। हम लोग यहां कितने प्रकार के कार्य हैं, नहीं, जिस काम के लिए है वो काम करने का। सत्संग, सत्संग हुआ ये पांचवा। बिना सत्संग, सत्संग माने क्या, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम्मा ख्याति पृच्छति भुंते भोजते चैव सर्वधम प्रतिलक्षणम्। सम्यक रूपेण गमनम अनुगमनम, जैसे संत चल रहे हैं वैसे ठीक विचारों पर चल, विचारों को हम मानते नहीं हैं। गुरु जी ने कहा जाको भांग मत खाना, कहा जब प्राण जाए बरू भांग न जाए, बस तो हो गया, झूठ मत बोलना, प्राण जाए बरू झूठ न जाए। अपनी प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ेंगे उनके अनुसार में, तब तो कैसे होगा। इसलिए वो मंत्र काम नहीं करेगा, इसलिए भजन क्रिया में सत्संग होना चाहिए। बीच बीच में वैष्णव लोग संत लोग इंजेक्शन देंगे, जिसमें हम लोगों में सामर्थ्य आएगी उसको पालन करने के लिए। बिन सत्संग न पाम ही प्राणी, बिना सत्संग के भक्ति नहीं होगी भाई, भक्ति रही हुई भी यदि सत्संग बंद हो जाए भाई, पहले हमारा यह काम हो जाएगा, शाम को हम कोई काम करते हैं। पहले हमारी मिठाई जो बनी है उसको बिक्री हो जाएगी तब जाएंगे मस्ती, हमारा यह काम हो जाएगा तब हम जाएंगे। अरे दो चार आदमी आ गए उनसे बातचीत करने में लग गया, इसलिए आज प्रवचन में साधु संत में नहीं आया, तब तो उन्हीं लोगों में अधिक बुद्धि रही, ऐसे भक्ति नहीं होती, इतनी सहज नहीं है भक्ति जितना हम समझते हैं। खूब अच्छी तरह से प्रगाढ़ निष्ठा होनी चाहिए इन सभी विषयों में, जैसे गोप कुमार का था ऐसा ही दृढ़ता होगी। सत्संग, सत्संग माने ये नहीं बड़े मुश्किल से हमारे मित्र आ गए साधु भाई क्यों नहीं आए, वो ऐसे काम में लग गया है, और जितनी बातें थी जब तक के नहीं मिले थे, जो बातें जो नई नई हुई हैं बस रस में चलने लग गए, उसी बातों के रस में, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया और हमने ऐसा कर दिया, बस यही बातें होती रही संसारिक बात, ये साधु संग। सत्संग माने कृष्ण की कथाएं हो रही हैं, हमारी त्रुटियां कहां हैं, ये सब को देख करके साधु संघ। छ श्रद्धा पूर्वक इसके बाद में श्री विग्रह का दर्शन देख करके क्षण क्षण में रोमांचित पुलकित और नई नई भावना, राधा जी को देखा, कृष्ण को देखा, महाप्रभु जी को देखा, कैसी कैसी भावनाएं हृदय में आने लगी, उनके आंखों से करुणा की वर्षा हो रही है, उनके मुखारविंद पर कैसी सुंदर स्मित मधुर मुस्कान है, मानो अपना सब कुछ देने के लिए वो तैयार है, नई नई भावनाएं, बड़ी करुणा से हमारे तरफ में देख रहे हैं। महाप्रभु जी जहां देखा जगन्नाथ को पागल हो जाते थे, पागल का मन एकदम मूर्छित ही हो जाते, ऐसे इन दृष्टियों से श्री विग्रह की तरफ में देखे, कहां से ये मूर्ति बनी, जयपुर की है, बड़ी फर्स्ट क्लास बनाया, कला को इसने एकदम बड़ा प्रकाशित करके रखा, खबरदार भूल करके मत देखना, कहा जी हमारा दुर्भाग्य है जब हम ऐसा नहीं देख सकते, ये तो कह सकते, उनसे प्रार्थना करो। इसलिए हम लोग ठाकुर जी को सामने से प्रणाम नहीं करते, हम दृष्टा नहीं है, दृष्टा वो है, बारीकी से मत देखना, उनकी करुणा को चाहिए, बारीकी से क्या देखेगा, क्या देखेंगे हम, कौन सी कला इसमें है ना, कहां की क्या देखेंगे, बारीकी से बड़े देख रहे हैं, बड़ी सुंदर से हमने कहा भाई क्या देख रहे हैं, मैं तो आज तक थोड़ी देर के बाद हमको बुलाए, ये कहां से मुक्ति आपने लाए, तो मैं कुछ नहीं कहा, थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी कला की थोड़ी सी कमी यहां पर हो गई, यहां पर थोड़ा सा कमल जैसा लाल नहीं हुआ, ऐसे ये सब मत देखना, इनको साक्षात राधा कृष्ण के रूप में देखना, और नहीं देखते हो तो उनसे प्रार्थना करो कि वो दूसरी। इसलिए हम लोग लंबा ठाकुर जी के सामने अपना बायां भाव रख करके और प्रणाम करते हैं, जो उनकी कृपा की दृष्टि हो। श्री विग्रह और भक्ति ये सब तलोक में पहुंच गए। श्री विग्रह और भक्ति के भेद विषय विचार अर्थात मध्यम अधिकारों पर आने लग गया, अभी तक कनिष्ठ अधिकारी, केवल श्री विग्रह को अतिरिक्त और वैष्णव में उतना भाव नहीं, अब वो अब विग्रह में और संतों में क्या वैशिष्ट है, विचार में भक्ति किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं ना? इसके बाद में आत्मा हमारे स्वरूप की अनुभूति, संसारिक जितने अनर्थ थे वे दूर हो गए, और मेरा स्वरूप क्या है इसकी स्फूर्ति, देखो इतने स्तर के बाद में आया है स्वरूप की अनुभूति, जिसको बाबा जी लोग एक दिन में कहते तुम है गोपी, तुम्हारा स्वरूप गोपी का है, गौड़ियम वैष्णव में ये आज कल के जो 90 सन्यासी और लाल कपड़े वाले हैं वो लाइन ही में नहीं है, वो गोपी जानते ही नहीं, वो केवल आम की गुठली को चूसते हैं और रस तो उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, ये कहां इतने दूर के बाद में तब स्वरूप की उपलब्धि हुई, कुछ स्वरूप की उपलब्धि बतलाएगा कौन, ये करने से बात में गुरु जी ही निर्देश देंगे और उसका स्वरूप उद्भाषित होगा, स्वरूप की अनुभूति, इसी को मुक्ति पद कहते हैं अथवा ब्रह्मानुभूति अथवा शांत शांत भाव, ये स्वरूप यहीं से आरंभ होगा। नौ अब प्रेमा भक्ति चला, यहां से स्वरूप की अनुभूति नहीं हुई, मैं गोपी हूं और मेरी सेवा क्या है, तंबूर से बजा कर्पूर सेवा मेरी सेवा, कहां बात है तारावली विश्वभावपुर जनमगन विश्वभावपुर में जन्म हो गया। अभी कुछ नहीं हुआ, अर्थ भी नहीं गए, कुछ भी नहीं हुआ, और विश्वभावपुर में जावट में विवाह हो गया, वहां पर रह करके और उनकी सेवा करने की इतना सजन। ऐसे कह करके निर्बुद्ध लोगों को बाबा जी लोग विषाक्त करते हैं, और हम लोगों में से कुछ लोग समझते नहीं। अब यहां पर भक्ति होने पर नौवें में भगवान नाम का अब स्वरूप से कीर्तन होगा, स्वरूप से हरि कथा का श्रवण होगा, और भगवान की रूप रूप गुण लीला का वर्णन होगा। वो लोग कहेंगे, बाबा जी लोग गौड़ीय मठ में कान में भीतर में मंत्र नहीं देते, वो दूर से कह देते हैं। ऐसा मंत्र होना चाहिए, साधक को बुला लो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, और चुपचाप उनके कान में फू मारेगा ना? इसको कहेंगे ये अब दीक्षा हुई है, जब तक ये कान में फू नहीं मारा है,
कान फुकवा लिया।
हाँ, इसको कहते हैं कान फुकवाना,
एक कान नहीं फिर दो कान फुकना,
बदमाशी की हद होती है। वो आप लोगों को कहा देंगे कान फुकवाया तो नहीं तो कान फुकवाने थे, तो गुरु जी कान को फूकते हैं। अरे जड़ कानों से जड़ आंखों से भगवान नाम का और भक्ति का प्रेमा भक्ति का क्या प्रयोजन संबंध है? ये कह रहा हूं कि आज एक ऐसे ही व्यक्ति ने हमसे ये सब प्रश्न किया, हमको बड़ा थोड़ा सा अपसेट हो गया, हमें और कुछ क्रोध आ गया। ये सब चीजें ऐसी नहीं है। अरे गोप कुमार को उनके गुरु जी ने कान को फूका है, सनातन गोस्वामी का रूप गोस्वामी का कान कौन फूका? इन बाबा जी ने ना किसने फूक दिया? ये जगत के जंजाल हैं ये बाबा जी जो ऐसा कहते हैं, इसलिए कभी भी उनके खप्पर में मत पड़ना, नहीं तो तुम्हारा यह कार यह कुल और वह कुल दो कुल खो आएगी। यहां पर नौ में भगवान नाम कीर्तन, उनका नाम रूप गुण सुनना, यही दीक्षा है यथा, और वहां पर किंतु गौरव मिश्रा भक्ति होगी। गौरव मिश्रा, कृष्ण बड़े हैं, हमारे सिद्ध ग्रह बड़े हैं, हम छोटे हैं, ऐसा गौरव भाव है। वो सर्वसज्जशाली हैं, हम दीनहीन छोटे तुच्छ हैं, ऐसा ही गौरव भाव आएगा। उसके बाद में ऐश्वर्य माधुर्य की अनुभूति, जैसे द्वारका में गए, अयोध्या में गए, बैकुंठ के ऊपर में जब जाते हैं तो अयोध्या में गौरव मिश्र भक्ति देगा, द्वारका में भी अब गौरव किंतु माधुर्य कुछ आने लग गया, और उस ऊपर में गए हैं तो एकदम माधुर्य की अनुभूति उन्होंने की है। वहीं पर भगवत प्रेम, और भगवत प्रेम में ही भगवान का दर्शन, भाव अवस्था में कहीं एक झलक मिल जाएगी, बस थोड़ी सी झलक मिली, इसके बाद में नहीं, उसकी उत्कंठा बढ़ी, बिना उत्कंठा प्रारंभ से ही उत्कंठा यदि किसी की नहीं होगी तो एक चूल भी आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए उत्कंठा कब मिलेगी, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और उसके लिए सर्वस्वता की भावना बनी रहेगी, और कोई कामना वासना हृदय में ना आने पाए, ये बहुत विशेष रूप से देखना है। फिर उसमें सेवा रस की प्रतिष्ठा हो, सेवा की में रस भावना है, अर्थात अत्यंत प्रति होगी सेवा करने में। अयोध्या में सेवा रस की विशेष निष्ठा है, किंतु ऐश्वर्य भाव उसमें मिला हुआ है। अब दशम में चलिए द्वारका, द्वारका में सौभाग्य रस निष्ठा, सौभाग्य माने कृष्ण मेरे पिताजी हैं, कृष्ण की मैं
पुत्र हूं,
सेविका हूं, रुक्मिणी सप्तभामा का भाव, उद्धव का मेरे भाई हैं, मेरे सखा हैं, मेरे सब कुछ, वो स्वभाव इस तरह से निरुपाधि भगवत कृपाजनित विशुद्ध परम प्रेम में दर्शन की उत्कंठा वहां पर लगी रहती है। दर्शन सख्य नर्म भाव भी वहीं से प्रारंभ होता है, किंतु पूर्ण रूप में नहीं। नर्म भाव मैंने परिहास युक्त। अब 11वें में चलिए, सत प्रेम मदे विफलता, वृंदावन में पहुंच जाए। सतत प्रेम मद में विह्वल हो जाए। गोलोक में प्रेम रस निष्ठा है, शुद्ध माधुर्य शुद्धा प्रीति है। इसमें भी सखा से आरंभ करो, सखा के ऊपर में चलो वात्सल्य में, और उसके बाद भी मधुर भाव में। मधुर भाव भी वृंदावन में दो प्रकार के माने गए, एक स्वकीय का कुछ गंध लेकर के उन गोप कुमारियों में है जिन्होंने कात्यायनी की पूजा की, उनमें ब्रज का भाव तो है कि कुछ स्वकीय का गंध होने से कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर सकी। वो विरहति प्रताप धुता सुभा, जब ऐसा हुआ विरह के ताप में, जब उनके पति ने उनको घर में बंद कर दिए, उनको जिनके अंदर में कुछ स्वकीय का गंध था, फिर वो विरह ताप से उनका वह भाव जल गया और जल करके शुद्ध होकर के कृष्ण लीला में पहले वो पहुंच गई, राक्षस स्थल में लीप हो गई। और एक शुद्ध है नित्य सिद्ध राधा जी की काय स्वरूप वो गोपियां हैं। इनमें एक बात उन्होंने बतलाया, लौकिक संबंध बुद्धि रहेगी। जब तक कि लौकिक सब ये सद्बंधु की भावना नहीं, संबंध बुद्धि नहीं रहेगा। यही गौड़ीय वैष्णव का अपना वैशिष्ट है जो और किसी भी संप्रदाय में नहीं, क्या लौकिक सद्बंधु की भावना। अर्थात कृष्ण मेरे प्रियतम है, कृष्ण हमारे सखा हैं, कृष्ण हमारा पुत्र है, यह लौकिक भाव रहेगा। किंतु लौकिक नहीं है, है अलौकिक। कृष्ण भी अलौकिक, भक्त भी अलौकिक, किंतु अलौकिक का ही कृष्ण के प्रति अपने में लौकिक और कृष्ण में लौकिक सद्बंधु की भावना रहेगी, नहीं तो ब्रज प्रेम सिद्ध ही नहीं होगा। ये सनातन गोस्वामी ने विशेष करके बहुत से जगहों में बतलाया, विशेष करके बतलाया उद्धव जी और नारद जी और गोप कुमार द्वारका में जब थे, तो वहां पर उद्धव जी और नारद जी दोनों मिल करके गोप कुमार के संबंध में मंत्रणा कर रहे हैं, बतला रहे हैं कि देखो इसमें ये भाव है जो हम लोगों में भी नहीं है। अब बिना इस लौकिक संबंध भाव के कृष्ण को उस रूप में नहीं पाया जाता। गौड़ीय वैष्णव के आचार्यों के लक्ष्य काम्य और अभीष्टतम वस्तु अंत में क्या है, ब्रजभाव। बिना ब्रजभाव की उनकी कामना आकांक्षा ये सब कभी भी पूर्ण नहीं होती, इसलिए वो जैसे तैसे उस भाव तक, ब्रज भाव तक पहुंचना चाहते हैं भगवत अनुभूति को। यदि भगवत अनुभूति है तो ब्रह्म ज्ञान आच्छादित हो जाता है। भगवत भाव ने थोड़ा ईश्वर्यशाली रामचंद्रिया नारायण है, उनकी सेवा की भावना जैसे हृदय में आएगी तो ब्रह्म भाव जो है, मैं ब्रह्म में मिल जाऊंगा, यह भाव ढक जाता है ना। और वैसे ही शुद्ध यदि ब्रज का माधुर्य होगा ना, तो यह भगवत अनुभूति आच्छादित हो जाती है। इसको समझना जरा कुछ कठिन होगा, भक्त लोग समझ जाएंगे, किंतु साधन फिर से समझो। जैसे प्रदीप आया तो अंधकार को आच्छादित कर दिया प्रकाश ने, बात ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जैसे दिन है, सूर्य अस्त हो गया, रात ने प्रकाश को ढक लिया, ऐसा ही कहते हैं ना। सूर्य नहीं है और आपने अंधकार के द्वारा प्रकाश को ढक दिया, इसी का नाम है रात। ऐसे ही यदि ब्रह्म का भाव है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं मुक्त हो करके भगवान में लय हो करके मैं ही ब्रह्म बन जाऊंगा, ये कब तक दूर नहीं होगा? जब तक कि भगवान की लीला कथाएं, वो भगवान इतने बड़े दयालु हैं कि अजामिल पर कैसी दया है, ब्रह्म भाव में ऐसी दया नहीं होती। गजेंद्र को कैसे उन्होंने दया की और भक्तों पर कैसे दया करते हैं, बड़े सड़े स्वर्गशाली हैं वो, जो कुछ भी होगा वो घटन जो हो
गटन, गटन, गटन,
जो होने का है उसको, नहीं होने का है उसको भी वो घटा सकते हैं। जब भगवान के नाम रूप गुण लीला का ये जब ज्ञान होगा तो यह ब्रह्म भाव अपने आप घट जाएगा। जिसको भगवान का सरस्वर्ग का ध्यान है, जैसे नारद ऋषि इत्यादि हैं, सनत सनत सनंदन सनत कुमार इत्यादि हैं, ब्रह्मा जी के कृष्ण के प्रति भगवत्ता का भाव तब तक ब्रज भाव नहीं। यदि किसी को रसिकों से ये सब कथाओं को सुन करके यदि ब्रज का भाव माधुर्य भाव यदि आ गया, अपने आप वो भगवत तत्व का ज्ञान अच्छा दिखे। ज्ञाने प्रयासम उत्पाश्य नमंत एव जीवंत सम्मुखरितं भवति यवर्तम स्थाने स्थिता तन्वान मनोभि प्रायशो अजित जीतो पित्रेत। ज्ञान के लिए प्रयास मत करो, जो कृष्ण स्वयं भगवान है, राधा जी स्वयं भगवती है, मत ये सब विचार करो। जो भागवत में कृष्ण की लीला कथाएं हैं बस इसका अच्छी तरह से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। बृहद भगवतामृत की कथा हम लोगों ने अब तक जो सुनी उस पर खूब अच्छी तरह से विचार करो। ऐसे सब करते वो ब्रह्म का जो ज्ञान और जो भागवत का ज्ञान है, जो कृष्ण सर्वसर्वशाली हैं, वो सबके मूल आधार हैं, सब कारण कारणम हैं, अनादि हैं, सबके आदि हैं, इस भाव को छोड़ो। कृष्ण की इन लीलाओं का वास्तव कैसे दामोदर हुए, यशोदा माँ को गंदा नहीं हुआ जी ये भगवान है, सखा को चारण करने के लिए जाते हैं, कृष्ण ने कहा अरे जरा गैया को हाथ ले आना, तो मधुमंगल कहता जिसे तुम लाओ, तुम गैया को हाथ लाओ, बड़ा नौकर बना रखा है। वो अटपटी बातें कृष्ण को भी अच्छी लगती हैं, उनको भी अच्छी लगती है। वो सद्बंधु के अतिरिक्त ये हमसे बड़े हैं, मैं छोटा हूं, ये सब ज्ञान उनको नहीं रहा, ये बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए यहां माधुर्य के अनुभव से ऐश्वर्य का ज्ञान सब अच्छा हो जाता है। इस तरह से भाई बृहद भगवतामृत एक अपूर्व ग्रंथ है, यहां तक कि बृहद भगवतामृत की भांति एमन सिद्धांत ग्रंथ जगते होए नहीं आर होइबे नहीं, ये महान भावों का काम है। ऐसा ग्रंथ सिद्धांत का, रस का, विचार का, साधन और साधन का ग्रंथ एक साथ में होना, जैसे जैव धर्म बेजोड़ ग्रंथ है, ऐसे ये ग्रंथ भी बेजोड़ है। इसमें लीला, रस, भाव, सिद्धांत, एक तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदायों के जाति तत्वों का इसमें पूर्ण रूप से विवरण है सब। और सनातन गोस्वामी ने दया करके स्वयं टीका भी लिखी, हमारे भावों को कोई गड़बड़ ना करते, इसलिए क्या मैंने लिखा है, मैं खुद ही लिखू, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई लिख दिया और उनका भाव नष्ट हो। इसलिए कि ऐसे सुसिद्धांत ग्रंथ में और दूसरों का मतांतर प्रवेश न कर जाए, इसलिए मूल में जो थी, जो भावों को प्रकट नहीं है, उसको उन्होंने टीकाओं के द्वारा भी व्यक्त की उसकी। देखो दो तीन मैंने दूसरे अध्याय के तीसरे, दूसरे खंड के तीसरे अध्याय में 168 एक श्लोक है, जिनमें सरस एक शब्द है, सरस कभी होगा तो फिर हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। आठ प्रकार की व्याख्या किया सरस शब्द की, और व्याख्या का करते हैं कि ये दिख माने केवल मैंने दिग्दर्शन कराया, और ऐसे सुंदर सुंदर उसका सुरस सुरस का ऐसी सुंदर सुंदर व्याख्या की रामचंद्र जी में लगाएंगे, नारायण में लगाएंगे, फिर दास में लगाएंगे रस, हनुमान जी का रस, फिर सख्य में लगाएंगे सुबल सिद्धाम मधुमंगल का रस, और उसके बाद बात्सल्य में ले आएंगे जसोदा नंद बाबा का रस, और उसमें और बढ़ाएंगे सुरस को और लगा दिया गोपिकाओं का रस, और उसमें भी बढ़ा दिया ललिता विशाखा इत्यादि का, और फिर उससे भी लगा दिया चंद्रावली का, और उसे भी आगे बढ़ा दिया श्रीमती राधिका का शक्तियों के साथ में कृष्ण की सेवा में, ये सुरस ऐसे ऐसे नए नए अर्थ जो कहीं भी नहीं प्रकाशित किए गए हैं ये सब। और दीनता बस्ता कहा क्या दिख, मैंने केवल दिख दर्शन इसे कि इसलिए कोई केवल वैष्णव संप्रदाय नहीं, जो कोई भी साधक है यदि इसका थोड़ा सा भी अवलोकन किया बस वो अपने आप कृष्ण की तरफ में झुक जाता है। अरे थोड़ा सा बैठो, दो मिनट के बाद ही जाना, अभी हम लोग समाप्त करेंगे। यहां तक रूप गोस्वामी ने भी इस ग्रंथ के लिए लिखा है श्रीमत प्रभु पादाम भोजई सर्वा भागवतामृते, भागवतामृत में हमारे श्रीपाद प्रभुपाद प्रभुपाद अर्थात सनातन गोस्वामी जी ने सब कुछ लिखा है। व्यक्ति कृतास्ति गुढ़ा अपि भक्ति सिद्धांत माधुरी, स्वयं रूप गोस्वामी ने भी ऐसा कहा, और उसी के अनुसार में हमने और ग्रंथों का अध्ययन किया। इस प्रकार से इसकी महिमा अपार है, संक्षेप में हम लोगों ने इसका महिमा का वर्णन किया। अब कल से हम लोग दूसरे ग्रंथ को लेंगे, किंतु इस ग्रंथ को छोड़ेंगे नहीं, जैसे भागवत कभी नहीं छूटता है, गोस्वामियों के ग्रंथ नहीं छूटते हैं, ऐसे इसका बीच बीच में अवलोकन करेंगे फिर यदि होगा, और फिर इसका पाठ करेंगे हम लोग, और नए नए रस अनेक अनुभूतियां नई नई होंगी। आज हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, कल हम लोग वृंदावन जाएंगे सवेरे, और वहां पर भागवत पाठ 3 से 4 तक अथवा सवेरे 11 से 12 तक हम लोग करेंगे, और वहीं पर सब लोग प्रसाद पाएंगे, जो लोग भी वहां पर जाएंगे आप लोग चल सकते हैं, और फिर शाम तक हम लोग लौटते हैं। इसके बाद में हम परसों से दूसरा कोई ग्रंथ लेंगे, तो अभी हम लोग अभी आरती मत सभी करना है, यहीं पर अभी आरती हम लोग इस ग्रंथ की करेंगे, पुष्पांजलि देंगे, और आरती सभी लोग जो जो अपना लाइन है अपना अपना अलग से कर लेंगे, कुछ लोग यहाँ से कर लेंगे, और सभी लोग उसमें पुष्पांजलि दे करके तब भी वहाँ पर थोड़ा सा प्रसाद यदि होगा आप लोग थोड़ा थोड़ा इस ग्रंथ का प्रसाद भी ले लेंगे, और सनातन गोस्वामी से और इस ग्रंथ से कुछ उनके चरणों में अपने को दे करके प्रार्थना करेंगे। इस ग्रंथ का जो वर्णित विषय है उसमें हमारी निष्ठा हो और उसकी स्तुति हमारे हृदय में हम उसकी अनुभूति कर सके, ये प्रार्थना करके पुष्पांजलि दे करके सफी रहा गौ प्रमाण श्री कृष्ण गोपाल गोविंद हे नंद किशोर
हैं।